बिस्मिल्ला करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोहु कलम सफा नंबर 19 से 22 सवालात।
जी,
पहला सवाल है, आलम जू क्या है? और हर मखलूक की गिर्द लहरों का जाल है, इसको आलम जू कह सकते हैं?
जी हाँ, जवाब है जी हाँ। आलम जू दरअसल किसी चीज के मजहर बनने की इब्तदा है। आलम में जू जो है, ये से मैंने इंग्लिश में इथीरियल रैल्म का है, ईथर, यानी जहाँ चीजें रोशनी से नीचे उतर के गैसेस फॉर्म में आना शुरू होती हैं, तो गैस से पहले की हालत को अगर हम मादी तर्जों में से समझें तो इसको ईथर कह सकते हैं। ठीक है, ये टर्म मतरूक हो चुकी हुई है। ईथर जो था ये कभी इस्तेमाल होती थी टर्म, ठीक है, अब तो लोग इससे वाकिफ ही नहीं। हमारे यहाँ वो स्पिरिट की तरह की एक चीज है, उसे ईथर कहते हैं, यानी जो चीज हवा में तहलील हो जाती है हम उसे ईथर कहते हैं। ठीक है, लेकिन जू कहते हैं जहां पे चीजें कंडेंस होना शुरू होती हैं, जब चीजें तसव्वुरात मुजस्सम मुतशक्कल होने लगते हैं, तो पहले उनकी तमसील बनती है। तो जब तसव्वुर में खदो खाल पैदा होते हैं, ख्याल में खदो खाल पैदा होते हैं और वो तसव्वुर बनता है, और तसव्वुर में जब जान पड़ने लगती है या उसके डायमेंशंस वाज़े होने लगती हैं तो उसको तमसील कहते हैं। तो वो स्टेज जो है उसे हम आलम में जू कहते हैं, फिर आगे सारा कुछ उसी का डिस्प्ले है। ठीक हो क्या? पार्डन,
ये दखान का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है कुरान में,
दुखान, दुखान,
ये दुखान, जी
दुखान जो है वो असास है। दुखान कार्बन का नेट है। क्या है? कार्बन का एक नेटवर्क है। जी हाँ, मैं अर्ज करता हूँ, मादी जोन में इसको हजूर ताजुद्दीन बाबौलिया नागपुरी ने यूं वाजे किया है कि धुआं, कुरान में जिसको धुआं कहा गया है, ये असल में धुआं नहीं है। धुआं तो नजर आता है, ये वो धुआं है जो नजर नहीं आता। हजूर कलंदर बाबौलिया ने कहा कि ये कार्बन का नेट है, नेटवर्क। उन्होंने फरमाया कि दुखान की तीन हालतें हैं, मुस्बत, मनफी और न्यूट्रल। मुस्बत, मनफी और न्यूट्रल। मुस्बत दुखान को उन्होंने मिठास के नाम से ताबीर किया है, मनफी दुखान को नमक से, और इन दोनों के मुलखस को यानी एसेंस को कहा है कि ये मतलब तीसरी हालत जो है न्यूट्रलिटी, उसको उन्होंने कहा कि इस मुलखस से जो मखलूक वजूद पजीर हुई है वो है फरिश्ता, और जो मनफी दुखान है उससे जो मखलूक बनी है यानी नमक और नमक की कैफियत या लहरों से जो मखलूक वजूद पजीर हुई है वो है जिन्नात, और मिठास यानी के मुस्बत कार्बन से जो मखलूक वजूद पजीर हुई है वो इंसान और इंसान की दुनिया है। इसमें सिर्फ इंसान नहीं, इंसान की दुनिया भी इसी मिठास से बनी है। अब इसको जरा मजीद वाजे करें। अब हजूर कलंदर बाबौलिया ने फरमाया कि नेट है कार्बन का। अब अल्लाह ने कार्बन क्यों इंतखाब किया, ये अल्लाह की अपनी हिकमतें, अपनी मर्जी है। कार्बन की मौजूदगी जहां होगी वो कार्बन की मुस्बत हालत ही कहलाएगी, असबात हो गया ना कार्बन का। तो तो आप गौर करें कि कार्बोहाइड्रेट, क्या लफ्ज बोला,
कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी पानी और कार्बन मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट यानी निशास्ता बनता है। पौधे क्या कर रहे हैं, ये हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, जमीन से पानी लेते हैं, और रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये इसके केमिकल फार्मूले आपको किताबों में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इंसान और इंसान की दुनिया में तमाम चीजें देखें तो कार्बन का नेट है, कार्बन का असबात है, कार्बन का होना है। तो ये दुकान जो है ये असल में असास है, किस चीज की, इन तीनों की, कार्बन की मुस्बत हालत यानी कार्बन का होना। अब देखें साल्ट्स में क्या है, सोडियम क्लोराइड, इसमें देखें कार्बन एब्सेंट है, पोटाशियम क्लोराइड इसमें साल्ट है, साल्ट में कार्बन नहीं होता, यानी कार्बन का जहां पे नहीं है वो जगह या वो मिकदारें जिसमें कार्बन के मॉलिक्यूल शामिल नहीं हुए वो साल्ट या नमकीनी कहलाएंगे। उनसे जो, उन लहरों से जो मखलूक वजूद पजीर हुई है उसका नाम है जिन और जिन्नात की दुनिया, यानी जिन्नात की दुनिया में पहाड़ हैं, दरिया हैं, बाग हैं, खेत और खलियान हैं, उनके जो अफराद हैं वो सारे इन लहरों से बने हैं। कौन सी लहरों से, जिससे नमक बनता है। इंसान के अंदर ये दोनों मिकदारें बराबर चल रही हैं, उसके खून में नमक भी है और मिठास भी। अब जब हमें रोजे का प्रोग्राम दिया गया वो असल में इसलिए है कि हमारे अंदर नमक और चीनी की मिकदारें, मिठास की और नमक की मिकदारें कम की जाएं, ताकि आपके अंदर मलुकियत जागे, यानी कि आपके अंदर वो जो इन दोनों का मुलखस है, क्योंकि इंसान खलासा है, कायनात है, इसलिए ये तीनों कैफियतें उसके अंदर हैं, नस्म मुतलक भी, नस्म मुफरद भी और नस्म मुरक्कब भी। इंसान नस्म मुरक्कब है तो जाहिर है मुफरद से बने और मुफरद बने मुतलक से। अब इसकी मिसाल सुन लें, रुई, रुई जो है ये नस्म मुतलक है, उससे धागा बुना, अब धागे का ताना बना तो ये नस्म मुफरद हो गया। जब इसको खड्डी पे चढ़ा के वीव किया गया, बुना गया, ताने के बाद बाना भी आ गया उसमें, तो क्या हो गया, ये नस्म मुरक्कब हो गया। जब इसी तरह थॉट्स की वेव्स, थॉट खालसतन नूर कहलाया या उससे बनने वाली मखलूक फरिश्ता कहलाई, जब उसका सिंगुलर नस्म मुफरद बन गया नस्म मुतलक से, यानी उसका ताना तैयार हो गया, तो ये जो मखलूक उस ताने से बनी हुई है उसका नाम जिन्नात हो गया। और जब ये मुरक्कब हो गया, यानी थॉट्स की वेव्स आपस में इंटरवीव कर गई, मुरक्कब हो गई, क्या हुआ, इनकी हदबंदी हो गई, ये ठोस हालत में जाहिर हो गए, इसका नाम हो गया इंसान और इंसान की दुनिया। तो ये बात वाजे हो गई कि ये दुकान और चीजों का जो पीछे, जो जाहिर है हर चीज के पीछे सोच काम कर रही है, उसको जब मादियत की शक्ल दी जाएगी तो फिर दुकान की लहरें यानी कार्बन का नेट इस्तेमाल किया जाएगा। तो आलम जू जो है वो असल में गोया इस ताने बाने पे काम करने वाली लहरों का नाम आलम जू हो गया। अब क्लियर हो गया दुकान और जू का ताल्लुक। जी
दूसरा सवाल है, कोई फर्द जहां भी है
जी
ऐसे में इंसानी इरादा क्या मायने रखता है, यानी इरादा है क्या?
जी
और ये
अब ये
पहुंच
इंसान
कहाँ है?
तमस्सुल अव्वल, पहले तो तमस्सुल अव्वल को समझ लें। देखिए जब आप किसी भी चीज को सोचते हैं तो आपके जहन में उसकी एक तस्वीर उभरती है। मसलन आपको भूख लगी तो आपका जी चाहता है खाना खाने को। अब खाना जो है ये तमस्सुल अव्वल है। अब उसमें तमसील में जब मजीद जुजियात दाखिल होती हैं तो आपके इरादे और आपकी ख्वाहिशात के तहत क्या होता है, मैंने आज बिरयानी खानी है, मैंने आलू छोले खाने हैं, फिर इत्तला आती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप कहते हैं चलो मैं चटनी से रोटी खा लेता हूँ। तो ये क्या हुआ, ये तमस्सले दोम और सोम बन गया। क्या हुआ, आपके इरादे और वसाइल की दस्तयाबी के बाद तमस्सुले अव्वल में जो रंग भरे, मैंने बहुत डेली रूटीन की मिसालों में से एक मिसाल अर्ज की है, हर वक्त यही कुछ हो रहा है। हम रूहानियत को कहीं और ढूंढ रहे हैं, ये हमा वक्त हर सांस के साथ जो कुछ हो रहा है ये सब रूहानियत है। सांस आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कोई दिलवार है, आप अपनी मर्जी से सांस नहीं रोक सकते, अपनी मर्जी से ले भी नहीं सकते। तो इरादा क्या हुआ, इरादा ये हुआ कि आप सांस तो मतलब है मशीन चल रही है, अब गाड़ी चल रही है, उसका इंजन चल रहा है, गाड़ी के कंट्रोल में तो नहीं है इंजन का चलना, लेकिन ड्राइवर के इख्तियार में है कि वो गाड़ी को कहाँ ब्रेक लगाता है, कहाँ तेज करता है, गाड़ी को रफ्तार बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। ये है इरादे का रोल। इंसानी इरादों की बात हो रही है, इंसान को चूंकि नीयत का इख्तियार दिया गया है लिहाजा वो नीयत, यानी कि अल्लाह ने, देखें आप कंप्यूटर पे या इस पे मोबाइल पे आपने गेम्स खेली होंगी, अगर आप दाईं तरफ मोड़ते हैं तो बनाने वाले ने दाईं तरफ के सीन बनाए हैं, फर्ज करें कि वहां बाघ का सीन बना हुआ है। अगर आप इसे बाईं तरफ स्क्रॉल करते हैं तो फर्ज करें वहां आग जल रही है, और अगर आप इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं सामने को जाते हैं तो क्या होता है, फर्ज करें कि वहां अल्लाह मियां बैठे हैं, यानी अल्लाह का कायनाती निजाम सीधा जाने में, दाईं जाने बागात हैं, बाईं जाने आग जल रही है। तो अगर आपका एक कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है वो दाएं और बाएं की हरकत को इस तरह डिस्प्ले पे ला सकता है तो अल्लाह ने भी तो यही किया हुआ है। आपको इख्तियार दिया है कि आप दाएं जाएं या बाएं जाएं या सीधा जाएं, आपके पास तीनों ऑप्शन है, आप ओब्लीक चलें या सीधा चलें, यानी आप तिरछे होके चलें, ला रैबफी तिरछापन आ जाए आप में, लेकिन अल्लाह की बात में अल्लाह के निजाम में कोई आड़ा तिरछापन नहीं है, इसलिए आपको ओब्लीक चलना फायदा नहीं दे सकता। क्या कहा कि आपके पास इरादा, इरादा इरादा क्या है, गाड़ी में आप बैठ गए, ना आपने खुद को बनाया ना गाड़ी को बनाया, लेकिन आप गाड़ी के ड्राइवर हैं, तो गाड़ी आपके इरादे पे चलेगी। इरादे का रोल समझ आ गया आपको, ना आप गाड़ी बना रहे हैं ना ने ड्राइवर बनाया है, लेकिन जब आप एज ए ड्राइवर गाड़ी में बैठ गए तो फिर आपका इरादा चल रहा है, आपने जहां ब्रेक लगानी है आप वहां ब्रेक लगाएंगे, जहां नहीं लगानी वहां नहीं लगाएंगे, एक्सीलेटर देंगे, आपने एहतियात करनी है कि गाड़ी ना टकराए, आपने एहतियात करनी है कि ये रास्ते पे रहे, स्टेयरिंग पे कंट्रोल रहे। ये है इरादे की मिसालें। बात वाजे हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
खला क्या है, क्या ये शक्ल रखती है?
जी हाँ, खला एक वजूद है। खला क्या है, खला क्या है, एक वजूद है। इसे अंग्रेजी में आप लफ्ज वॉइड से समझ सकते हैं, मसलन बुलबुला क्या है, बुलबुला अपने अंदर एक खिला का हामिल है, लेकिन उस खिला में हवा भरी हुई है, हाँ या नहीं? वो नजर नहीं आती। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जब गर्दिश कर रहा है न्यूट्रॉन के गिर्द, प्रोटॉन के गिर्द, तो जो दरमियान में फासला है उसको क्या कहेंगे? खिला ही तो कहेंगे। अब जमीन का अपना हुजम कितना है, सूरज का कितना हुजम है? जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है कितने फासले पे? 9 करोड़ मील के फासले पे। तो ये 9 करोड़ मील क्या है? खिला है ना। अब मैंने आपको 2 मिसालें दी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के गिर तकरीबन इसी निस्बत से इतना दूर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन के अपने साइज के हिसाब से। दरमियान में क्या हुआ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान? खिला। खेल किसका है? चार्जेस का। इसी तरह जमीन और सूरज के दरमियान, जमीन और चांद के दरमियान क्या है? खिला। इसी तरह इंसान खिला है, खिला खाली जगह है, खौल है, खिला से ही खौल है। अब खौल का मतलब है खिला का हामिल होना। इस खौल में इतलात भर दी गई हैं, तसव्वुरात भर दिए गए हैं। ये तसव्वुरात क्या हैं? इस खिला को भरे हुए हैं। इसकी मिसाल बीज के अंदर दाल होती है, दालों के बीच में एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक वजूद होता है जिसको आप पौधा कहते हैं। अब चने के दाने के बीच में आप चने के दाने दालें दोनों तोड़ दें तो दरमियान में उसकी जो दुमसी बनी होती है वो छोटा सा बीज होता है। असल में बीज क्या है? पौधे की माइक्रोफिल्म प्लस ये दालें उसको इब्तदाई गिजा फराहम करने का सामान है, उसका खौल, उसका शेल। खौल शेल बोल रहा हूँ, अब खिला नहीं बोल रहा। ये शेल के अंदर खिला है, उसमें दालें भरी हुई हैं और पौधा है। पौधा माइक्रोस्कोपिक फिल्म है। वो माइक्रोस्कोपिक फिल्म एक्टिवेट होती है जब उसे पानी मिलता है, साथ में मुनासिब टेम्परेचर मिलता है। तो वो पौधा जो उसके बीज के अंदर है छोटा सा, वो स्प्राउट करता है, बाहर को निकलना चाहता है। और वो निकलता है तो क्या होता है? बाहर का छिलका नरम हो जाता है, अंदर ऐसी केमिकल चेंजेस आती हैं कि छिलका नरम पड़ जाता है। तो वो छोटा सा पौधा अपनी दालों से एनर्जी डिराइव करके इस काबिल हो जाता है कि उस छिलके को तोड़ दे और बाहर निकल आए। वो निकलता है, फिर उसके 2 रुख हो जाते हैं, फिर जौजैन वाला चक्कर, यानी जड़ें नीचे की तरफ जाती हैं, तना ऊपर की तरफ, फिर उसके पत्ते बनते हैं, वो रोशनी की तरफ जाते हैं, वहां से वो फोटोसिंथेसिस का अमल होना शुरू होता है और वो जड़ें पानी मुहैया करती हैं, हवा कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया करती है, रोशनी क्लोरोफिल को एक्टिवेट करती है और वो कार्बोहाइड्रेट बनाना शुरू कर देता है और ऑक्सीजन रिलीज करने बैठ जाता है। तो ये सारे का सारा निजाम क्या हुआ? खिला। खिला के अंदर सब कुछ हो रहा है, ठीक हो गया? इसी खिला को अल्लाह ने रहम कहा है। इसी के अंदर वो नुक्ता है मास का, जहां तसव्वुरात यकजा हो जाते हैं, एक फोकल पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, वहां से 9 एक फर्द को रिप्रोड्यूस करने लगती है। यानी फर्द अपनी 9 के अफराद को रिप्रोड्यूस करने लगता है, यूं कह लें। तो ये सब क्या हुआ? खिला में इत्तलात का आना। अब अगर आप इंसान के वजूद को देखें तो सब खिला ही खिला है। नाक के अंदर क्या है? खिला। मुंह के अंदर क्या है? खिला। सीने के अंदर क्या है? खिला। इसी को जोफ कहते हैं। पेट के अंदर क्या है? खिला। अब मैदा क्या है? खिला। आंतें क्या है? खिला। हड्डियां क्या है? खिला। उनके अंदर क्या है? खिला। यानी हर चीज जो फासला रखती है अपने दरमियान में, उस फासले का क्या नाम देंगे आप? मैंने आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मिसाल देकर ये कॉन्सेप्ट आपका साइंटिफिक टर्म्स में वाजे करने की काबिश की। ठीक हो गया
जी, बहुत शुक्रिया।
चले
आखिरी सवाल है,
इरशाद,
कैफियत, कैफियत की परत जो है इनको चेहरा कह सकते?
जी हाँ कह सकते हैं, लेकिन चेहरा जो है वो असल में स्क्रीन है। किस चीज की? कैफियत की। चेहरे पे जो तासुरात गुजर रहे हैं, जो तासुरात होते हैं, वो अंदर की कैफियत का इजहार होते हैं, इसलिए उसको चेहरा कहते हैं। स्क्रीन को जिस पे कैफियत का डिस्प्ले होता है। तो चेहरा क्या हुआ? जिससे आप किसी चीज का सुराग लगाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। मसलन आप मुझे देखते हैं तो आप मेरा चेहरा देख के कहते हैं ये मकसूद साहब है। गौर करें, मैं अपने बेटे को देखता हूं तो कहता हूं हाँ ये आसिम है, ये आमिर है, ये आतिफ है। ये फर्क किससे हो रहा है? उनके फीचर्स, उनकी शख्सियत के फर्क की वजह से उनमें ये तफरीक आ गई। तो चेहरा क्या हुआ? उनकी बातनी कैफियत, वो तो उनके अंदर है, लेकिन उनका जो डिस्प्ले है वो चेहरा कहला रहा है। ठीक हो गया
जी,
ये जो हजूर कलंदर बाब औलिया ने कहा ना कि वो कायनात, वो तस्वीरें जो हैं वो कायनात का चेहरा बन गई, यानी कि कायनात की सिफात के इजहार और शनाख्त का जरिया बन गई। ठीक हो गया जी,
बहुत शुक्रिया।
चलिए अपना ख्याल रखिए।